धौला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियभेयण उवहिसमुत्तिर्णये जिनेनमियुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमुहुं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना, और उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के बाद जो चूलिकाएं हैं दो, उसमें से हम दूसरी चूलिका देख रहे हैं। पहले हमने अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपना देखी विस्तार से, अभी स्थान प्ररूपना की बात यहाँ शुरू हुई है पेज नंबर 111 से। अविभाग प्रतिच्छेदों में हमने देखा था कि जिसको स्थान कहते हैं अनुभाग स्थान, तो दो प्रकार से होते हैं, अनुभाग बंध स्थान और उसके सत्व स्थान। ये सत्व स्थान जो है यानी वो बंधे हुए का घात होकर जो हतसमुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न होते हैं उसकी भी चर्चा है उसमें। तो उन्होंने जघन्य बंध स्थान, जघन्य जो अनुभाग बंध स्थान है उसकी चर्चा की थी। वो कहाँ होता है? हाँ, तो ज्ञानावरण की बात है हमारी, जो ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध कहाँ होता है, तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। तो उसमें क्या होता है, तो अंतिम जो वर्गणा है, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा, उसमें जो एक एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद वो सबसे समान है। एक ही परमाणु का जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी जितनी वैल्यू है उसको वहां अनुभाग स्थान कहने में आता है। प्रश्न ऐसा है कि एक परमाणु को आप अनुभाग स्थान कह रहे हो तो उसमें वर्गणा स्पर्धक होगे कि नहीं होगे, क्योंकि वो तो अनंतों में होते हैं। वो कहते हाँ वो होते हैं। तो वहां उन्होंने जघन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा तक का पूरा ही क्या क्या होता है, वर्ग वर्गणा स्पर्धक उसका स्वरूप समझाया। अब उसके बाद स्थान प्ररूपना अपनी शुरू हुई है। स्थान प्ररूपना 111 पेज से शुरू हुई, क्योंकि अभी तो हम 113 पर आ गए हैं, परंतु कल हमने जो देखा था स्थान प्ररूपना में, तो कहते हैं ऐसे स्थान जो हमने जो देखा, जघन्य स्थान कहाँ होता है, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। सूक्ष्म सांप्राय के उपांत समय में, द्विचरम समय में क्या होगा, वो अनंत गुणा वाला स्थान होगा। थोड़े अधिक नहीं होगा, अनंत गुणा, क्योंकि हमने देखे थे श्रेणी में प्रति समय आगे बढ़ते हैं, क्षपक श्रेणी की बात यहाँ ली है उन्होंने। तो कहते अनंत गुणा का विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है, और जो अप्रशस्त कर्म है उसका अनुभाग अनंत गुणा घटता है। सत्ता में से तो घटता है, बंध का भी घटता है, यानी वो बंध स्थान जो पहले नंबर का जघन्य स्थान देखा उससे दूसरे नंबर का जो स्थान होगा वो अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद वाला होगा, तीसरा उससे अनंत गुणा, चौथा उससे अनंत गुणा, ऐसे उल्टे क्रम से कहाँ तक आएंगे, अपूर्व करण वहां तक हम आएंगे। तो वहां तक तो अनंत गुणा वाले स्थान है, उसके बाद उत्कृष्ट स्थान तक, वहां सारी षडगुण यानी षडगुणी वृद्धि से सब स्थान हो गए, क्योंकि हम उल्टे क्रम से देख रहे हैं ना, जघन्य से शुरुआत करके उत्कृष्ट तक जा रहे, इसलिए कहेंगे वो षडगुणी रूप से वहां वृद्धि के सारे ही स्थान पाए जाएंगे। यहां तक अपनी बात कल हुई थी। उसमें भी जो बंध के स्थान और सत्व के स्थान से दो भेद किए थे, देखो निकालो 111 पेज पर हमने पढ़ा था 200 नंबर के सूत्र के अर्थ में, कहते स्थान किसे कहते हैं, एक जीव में एक समय में जो कर्म अनुभाग दिखता है ना, वो अंतिम जो उत्कृष्ट जो अनुभाग है एक किसी एक परमाणु में, उसे स्थान कहते हैं। वह स्थान दो प्रकार का है, एक है अनुभाग बंध स्थान, यानी जो बंध हुआ है उसकी अपेक्षा से। देखो जैसे हमने स्थिति बनती है, तो कुछ परमाणु में तो आबाधा प्लस एक समय, किसी में दो समय, तीन समय, किसी में उत्कृष्ट स्थिति बनती है। ऐसे परमाणु में भी किसी में थोड़ा कम जघन्य अनुभाग, किसी में अधिक 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 अधिक, यानी यथायोग्य जघन्य से उत्कृष्ट तक अनुभाग बंध के वहाँ पाए जाते हैं परमाणु अलग अलग। परंतु उसमें ये समझना है अनुभाग बंध किसको कहेंगे, यानी बंध का स्थान, अनुभाग बंध का स्थान अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको यहाँ स्थान कहेंगे। तो ये स्थान दो प्रकार के हैं, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्व स्थान। उनमें से जो बंध से उत्पन्न होता है वह बंध स्थान कहा जाता है, यानी बनते समय इसका अनुभाग इतना बंध है मैक्सिमम। जैसे स्थिति कितनी बनती है तो हम मैक्सिमम का नाम लेते हैं, वैसे अनुभाग कितना बंधा तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम इतना बंधा। पेज नंबर 111 पर हम दोबारा समझा रहे हैं, कल की बात थोड़ी रिपीट कर रहे। तो बंध स्थान यानी बंध से उत्पन्न हो रहा है, और पूर्वबद्ध अनुभाग का घात किए जाने पर बंध जो हुआ था, जो मैक्सिमम अनुभाग वाले परमाणु थे, तो उसका अनुभाग घटकर, यानी एक भी परमाणु इतने अनुभाग वाला नहीं रहेगा तभी तो हम कहेंगे ना वो घटा, तो घटकर, अभी उसमें घटकर क्या हो सकता है, घटकर वो बंध के सदृश भी हो सकते हैं कुछ स्थान। वो बंध का स्थान रहेगा परंतु इन बिटवीन कुछ और भी यहाँ स्थान चालू हो जाएंगे, केवल सत्व के स्थान। तो कहते हैं वो घटकर बंध के समान हो जाए, यानी किसी को उतना अनुभाग बनता है तो उसको बंध स्थान ही कहेंगे, और घटकर इन बिटवीन हो जाए वे स्थान तो उसको सत्व स्थान कहेंगे। ये उसका अर्थ होता है। फिर दोबारा बढ़ते देखो 111 में लास्ट लाइन, पूर्वबद्ध अनुभाग का घात किए जाने पर जो बंध अनुभाग के सदृश होकर पड़ता है, यानी बंधने वाले अनुभाग के सदृश हो जाता है घटकर भी, वह भी बंध स्थान ही है, उसको भी बंध स्थान ही नाम दिया है। भले वो घटकर हुआ है परंतु बंध के सदृश है तो उसको बंध स्थान ही कहेंगे, क्योंकि उसके सदृश अनुभाग बंध पाया जाता है। यानी उस जीव ने भले वो घटाया, पर किसी अन्य जीव को या इसी जीव को कभी पूर्व में इतना बंध वाला स्थान था या पाया जाता है, किसी में होता है, तो उसको बंध स्थान ही कहेंगे। और घाता जाने वाला जो अनुभाग स्थान बंधानुभाग के सदृश नहीं होता, यानी इस टाइप का किसी को बंध नहीं हो रहा है, परंतु ये स्थान सत्व यानी वो तो बंधे हुए का घात होकर उत्पन्न हुआ है, वो कैसा होता है, तो बंधानुभाग के सदृश नहीं होता है किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंक के मध्य में। हमने देखा नहीं वो षट्स्थान जो वृद्धि के स्थान बताए जाते हैं, तो एक षट्स्थान वृद्धि होती, उसमें अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, और लास्ट में अनंत गुणा वृद्धि होती। तो हमने वो ऊ चार वाला टेबल देखा था, आपको याद होगा। तो अंतिम क्या था, ऊ आठ, तो अंतिम ऊ के बाद एकदम आठ है, तो अंतिम ऊ और आठ के बीच में ये स्थान चालू यानी बन जाते हैं। तो ये सत्व के द्वारा ये स्थान यानी वो घटकर घात के द्वारा ये स्थान तैयार हुए हैं। देखो किंतु बंध सदृश अष्टांक और उर्वंक के मध्य में, अधस्तन उर्वंक से अनंत गुणा, जो अंतिम ऊ वाला ऊ था उसके ऊपर और जो आठ था उसके नीचे, इन बिटवीन, तो कहते अधस्तन उर्वंक से अनंत गुणा और उपरिम अष्टांक से अनंत गुणा हीन होकर स्थित रहता है। यानी वो कितने बड़ा अनंत गुणा है डिफरेंस, फिर दोनों के बीच वाला अंतिम ऊ से अनंत गुणा ज्यादा, उपरिम आठ से अनंत गुणा हीन, ऐसे बीच में स्थान तैयार होते हैं। अरे एक दो ही नहीं है, ऐसे अनेक स्थान होते हैं। तो कहते होता है उसको कहेंगे अनुभाग सत्कर्म स्थान। ये घटकर तैयार हुई, इसको हत समुत्पत्तिक जीव कहते हैं, इस जीव को अनुभाग बंध स्थान और सत्कर्म स्थान असंख्यात लोक मात्र होते, क्योंकि वो कितने असंख्यात लोक बार तो सरगुणी वृद्धि हुई थी, नीचे से जघन्य से उत्कृष्ट तक हम कहेंगे असंख्यात, क्योंकि असंख्यात लोक मात्र स्थान है, तो उसमें सरगुणी के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण हो गए, तो वो तो उसमें कितने बार जो वृद्धि के जो अलग अलग स्थान पाए जाते, बंध के जो स्थान पाए जाते अंतिम ऊ और आठ के बीच में, तो अनुभाग का घात होकर वहां अनेक स्थान उत्पन्न होते हैं, तो उसको कहेंगे अनुभाग सत्व स्थान। क्या 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 हाँ अनुभाग का बंध हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ स्थान बता रहे अनुभाग की अपेक्षा। देखो बंधा हुआ घात करने के बाद अनुभाग ज्यादा कैसे होगा, विशिष्ट अनुभाग बंध लाख बंधे। हाँ कौन सा पहले अगर सत्ता में ज्यादा था और कम बंध हुआ तो ये बात ठीक है, हो सकता है ना, पर कभी बंध ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे हम उसको, तो वहां सत्व स्थान हो गए कि नहीं हो गए, क्यों नहीं हो गए, इन बिटवीन तैयार हुए ना, सर्वत्र तैयार हुए। हाँ जो मात्र बंध से हुए हैं और जो घात से हुए हैं, जब घात से हुए तो बंध स्थान नहीं है वो नहीं कह रहे, बंधस्थान रहेगी और घात से हुए नए और एक्स्ट्रा हो गए उसके अंदर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, अभी तो शुरू किया है ना हमने। देखो तो कहते अनुभाग बंधस्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण है और अनुभाग बंधस्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी इतने तो बीच में तैयार होते हैं, खाली एक स्थान हुआ ऐसा नहीं है। ऐसा कहने पर देखो यहाँ अनुभाग बंधस्थान और सत्कर्म स्थान ऐसा कहने पर एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान होता है। हाँ देखो अनुभाग बंधस्थान अलग सोचो और अनुभाग सत्व स्थान अलग सोचो, एट ए टाइम एक जीव को बंध स्थान होगा तो वो मैक्सिमम वाला उसी को कह रहे हैं, और सत्व स्थान में भी जो मैक्सिमम वाला उसे घटा करके है उसी को कहेंगे, अलग अलग सोचो उसको, क्योंकि भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभागों की विवक्षित परमाणुओं में स्थित अनुभाग के साथ प्रवृत्ति न होने से बुद्धि से एकता को प्राप्त हुए उनकी एक स्थानता का विरोध है। अभी और आगे बढ़ेंगे ना तो उसकी चर्चा और चलेगी। देखो ये तो हमने बहुत बार देखा कि एक ही परमाणु में आप स्थान कहते हो तो वर्गणा स्पर्धक सब बेकार हो गई, वो तो उसमें तो अनंत परमाणु पड़े हैं, तो उसकी बात हमने देखी थी पहले भी, एक बार उसकी चर्चा हुई थी और कल भी हुई थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे हम तो कहते अंतिम निषेक में जो स्थिति है वो प्रत्येक परमाणु की उतनी स्थिति है, उसको भी हम जैसे 30 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति हमने कही, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति किसकी है, एक समय में जो समय प्रबद्ध बंधा है तो उसकी जो निषेक रचना हुई है, तो अबाधा को छोड़कर जो ऊपर निषेक हुए हैं, तो अंतिम निषेक की वो स्थिति है कहो या अंतिम निषेक के प्रत्येक परमाणु की स्थिति है, तो उसमें एक परमाणु की स्थिति होने पर उसी को गिनते हैं, अंतिम निषेक में अनंत परमाणु है तो वो 30 कोड़ाकोड़ी सागर को अनंत से गुणा तो नहीं करते हैं स्थिति गिनने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर अंतिम वर्गणा के जो अनुभाग एक परमाणु में है उसी को यहाँ अनुभाग स्थान कहते हैं, उसको नंबर ऑफ परमाणुओं से वहां गुणित नहीं करते, ये कहना चाहते। और जैसे वो उत्कृष्ट स्थिति में अन्य स्थितियां भी गर्भित है, वैसे यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग में अन्य अनुभाग भी गर्भित है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। पेज नंबर 113 पर अभी आते हैं। अब यहाँ से आज का विषय शुरू है 113। यहाँ शंकाकार पूछते हैं एक ही परमाणु से यदि एक स्थान उत्पन्न होता है तो एक समय में एक जीव में स्थानों की अनंतता का प्रसंग आता है, वह यही बात लेके बैठा है। कि प्रत्येक परमाणु का एक एक स्थान है, तो एक जीव में एक समय में अनंत स्थान उत्पन्न हो गए। प्रश्न समझ में आता है ना? समाधान, यदि ऐसा ग्रहण करते हैं तो सचमुच में सब अनंत स्थान होते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। वही इस प्रकार से समान धन वाले परमाणुओं का तो ग्रहण हो नहीं सकता। समान धन, धन यानी सबका जो अविभाग प्रतिच्छेद समान है, तो उनका भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अनुभाग की समानता होने से विवक्षित के साथ एकता को प्राप्त हुआ वह वहां ही पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? जो अंतिम वर्गणा के जब सबका समान अनुभाग हमने देखा था, तो सब में समानता है, उसके कारण उसको एकता को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका वह उत्कृष्ट अनुभाग हमने कह दिया। असमान धन वाले परमाणुओं का भी ग्रहण नहीं हो सकता। आप कहेंगे समान वाले की बात छोड़ो और जो हरेक वर्गणा में अलग अलग अनुभाग है उसका ग्रहण करो, तो कहते वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार एक आदि संख्याएं शत संख्या में पाई जाती है, उसी प्रकार अधस्तन अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग में पाए जाते हैं। हमने 100 कहा तो 100 कहने से 1 से लेकर 100 उसमें आ गए ना, शत संख्या कैसे तैयार हुई? 1, 2, 3, 4, 5 100 तक हम पहुंचे तभी तो शत हो गई। यही कह रहे हैं, जब हम उत्कृष्ट अनुभाग कहा तो उसमें अधस्तन सभी संख्याएं आ गई, ये उनको कहना है। फिर शंकाकार पूछते हैं, यहां द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा स्थान की हानि व वृद्धि का अभाव होने से। क्या कहते हैं? हमने निषेक रचना देखी थी, निषेक में प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट तक सारा अनुभाग है, और हमने स्थान किसको कहा? उत्कृष्ट अनुभाग वाले को कहा। अभी वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु अपना निषेक छोड़कर नीचे आए या ऊपर हो जाए, तो अनुभाग स्थान में कुछ कमती ज्यादा हो जाएगा, वृद्धि हानि होगी? अनुभाग तो उतना का उतना रहा। समझ में आई बात? हाँ। और किसी थोड़े परमाणु में अनुभाग मात्र कम हो जाए, आप कहेंगे आप स्थिति की अपेक्षा बात करें, उत्कर्षण अपकर्षण की, अनुभाग की अपेक्षा बात करो, तो उसमें भी सभी जब अपकर्षण उत्कर्षण होता है कि पूरा का पूरा नहीं होता है ना, पूरा लॉट थोड़ा ही उत्कृष्ट हो जाएगा, थोड़े परमाणुओं में ही ना अधिक अनुभाग होगा, बाकी उत्कृष्ट के उत्कृष्ट रह जाएंगे, तो स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। ये कह रहे उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। फिर पढ़ते इसको, अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा स्थान की हानि व वृद्धि का अभाव होने से सत्व के नीचे अनुभाग के बांधे जाने पर अनुभाग स्थान वृद्धि के न पाए जाने से। क्या कहते हैं? जब सत्ता में जो अनुभाग स्थान था उसके कम अनुभाग बांधा, तो स्थान थोड़ा ही बढ़ने वाला है। स्थान तो उसी को कहेंगे जो उत्कृष्ट सत्व में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित जो परमाणु है उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसी को स्थान कहेंगे। तो जितना अनुभाग सत्ता में है, मैक्सिमम जो अनुभाग, उससे कम अनुभाग वाला बंध किया तो स्थान में तो वृद्धि नहीं हुई, ये कहना चाहते। और सत्व की अपेक्षा एक समय में अनंत भाग वृद्धि द्वारा बंध के होने पर भी अनुभाग वृद्धि के देखे जाने से। क्या कहना चाहते हैं? अभी जितने सत्ता में अनुभाग था, अनुभाग स्थान किसको कहेंगे? वो टॉप मोस्ट वाले को। अभी अनंत भाग बढ़कर भी अगर वहां बंध हुआ नया, तो अभी स्थान किसको कहेंगे? वो नए बंधने वाले उसको स्थान कहेंगे, क्योंकि वो बढ़कर वृद्धि हुई तो उतने अधिक अनुभाग वाले परमाणु सत्ता में हो गए हैं वहां पर। तथा यानी अलग अलग दलील कर रहे क्यों हम द्रव्यार्थिक नए हैं, ये क्या कैसे नक्की कर सकते हैं? दूसरी बात क्या है? गुणित कर्मांशी से अन्य जीव में उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव की आपत्ति आने से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गुणित कर्मांशी का अर्थ क्या है? जिसकी सत्ता में परमाणु की संख्या मैक्सिमम है उसको कहेंगे गुणित कर्मांशिक। तो जिसकी सत्ता में परमाणु ज्यादा है उसका अनुभाग भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। किसी के परमाणु ज्यादा है, किसी के कम है, क्योंकि उस दोनों में वो उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है, क्योंकि अंतिम जो उत्कृष्ट अनुभाग वाला जो कितने भी परमाणु क्यों ना, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, हम तो एक परमाणु में जितना अनुभाग है उसी को देख रहे हैं। यहाँ क्या कहते, गुणित कर्मांशिक से अन्य जीव में उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव की आपत्ति आने से, यानी अन्य जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग नहीं हो सकता था क्योंकि गुणित कर्मांशिक से ही मानना पड़ेगा। द्रव्यार्थिक नय का कथन है मैक्सिमम परमाणु वाले, यदि आप द्रव्यार्थिक नहीं मानो और पर्यायार्थिक यानी नंबर ऑफ परमाणु मैक्सिमम है तो अनुभाग ज्यादा है ऐसा अगर मानेंगे तो गुणित कर्मांशिक से ही उसी के उत्कृष्ट अनुभाग होगा, अन्य जीवों के उत्कृष्ट नहीं हो सकता, परंतु ऐसा है नहीं है। उससे सीधे क्या हुआ, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है और एक परमाणु को ही हम यहाँ देख रहे हैं, इसलिए जाना जाता है कि यहाँ द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। इसके अतिरिक्त समान व असमान धन वाले पुद्गलों को ग्रहण करने पर सब जीव राशि के प्रतिभाग रूप अनंत भाग से अधिकता भी घटित नहीं होती क्योंकि उसमें विरोध है। क्या कहते हैं, समान धन वाले असम मैक्सिमम, फिर एक विभाग कम, जैसे हमने प्रति वर्गणा एक एक से बढ़ते हुए नीचे से ऊपर देखे थे, तो सारी वर्गणाएं भले पूरी वर्गणा एक वर्गणा के अनंत परमाणु मत लो, उन प्रत्येक वर्गणा का एक एक परमाणु तो लो, तो कहते ऐसे अगर हम सब अनुभागों को इकट्ठा करके उसको स्थान कहेंगे तो ये भी बात घटित नहीं होगी। कौन सी, फिर पढ़ते कि समान व असमान धन वाले पुद्गलों को ग्रहण करने पर, यानी एक एक से बढ़ती हुई और ये अंतर सहित वाले जो कुछ हमने सभी पंक्ति देखी थी अनुभागों की एक एक स्थान में, उन सबको अगर हम ग्रहण करते हैं तो अनंत भाग वृद्धि वाली बात भी घटित नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभाग हो जाएगा और वो अनंत भाग वृद्धि जो हम देखते हैं कहीं अनंत भाग वृद्धि अनंत गुणा वृद्धि वो भी घटित नहीं होगी। 114 पर अभी हम पढ़े, इस प्रकार असंख्यात लोकमात्र स्थानों में से प्रत्येक के स्वरूप की प्ररूपना करनी चाहिए, इस प्रकार स्थान प्ररूपना समाप्त हुई। यानी टोटल स्थान कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। हमने देखा है जघन्य स्थान कहाँ है, वो ज्ञानावरणी का तो हमने देखा सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय में, फिर वो अजघन्य स्थान में कितने ही स्थान अपूर्वकरण तक हम नीचे आए, तो अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा वृद्धि वाले देखें, उसके बाद उत्कृष्ट स्थान तक सारे कैसे हो गए, षडगुणी वाले वृद्धि वाले हो गए, यानी अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि फिर असंख्यात भाग वृद्धि, ये सारे जो हमने पहले देखे थे वैसे हो नहीं। अब 201 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, अंतर परुवणदाय एक एक कस्य ठानस केवड़ियम अंतरम, और र के ऊपर बिंदी दे दो प्राकृत सूत्र में, सौ जीवे ही अनंत गुणम एवड़ियम अंतरम। अंतरम देखो, अंतर परुवणदाय एक एक कस्य ठानस केवड़ियम अंतरम, र के कहां ऊपर चले गए, कहां गए सूत्र में, सूत्र में पेज में 114 पर है, वही पर है क्या, हाँ बरोबर। प्रश्न चिन्ह के पहले कर रहे हैं ना, र के ऊपर बिंदी, तो कहते सव जीवे ही अनंत गुणम एवड़ियम अंतरम। अब हम नीचे, हाँ एवड़ीय मंत्रम है ना, वो म उसका वहां चला गया, हाँ वो चिन्ह है इसलिए वो अलग हो गया। देखो नीचे हिंदी में अर्थ देखते हैं, अंतर प्ररूपणा में एक एक स्थान का अंतर कितना है, कहते सब जीवों से, वो जीवों के ऊपर बिंदी लगा लो, सब जीवों से अनंत गुणा है इतना अंतर है। शंका, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध स्थान और स्वस्थान के सत्व स्थान, ऊपर देखो आपके उसमें क्या लिखा है, नई पुस्तक में स्वस्थान देखो हम प्राकृत में पढ़ते हैं असंख्य जल लोग मित्तानी अनुभाग बंदे ठानानी संत ठानानी च सत्व स्थान होनी चाहिए परु विदानी। ये संत स्थान पहले शब्द आया है, एक सेकंड, सत्व स्थान की बात कहाँ आई, पहले आए थे अनुभाग बंदे सत्कर्म स्थान। देखो पेज नंबर 112 पर हिंदी में पांचवी संत कम्मठानम, प्राकृत में भी संत कम्मठानम था, एथ अनुभाग बंधठानम संत कम्मठानम चेदी, उसको सत्कर्म स्थान कहा था और यहाँ स्वस्थान कह रहे, वो सत्कर्म स्थान चाहिए क्योंकि प्राकृत में उसको संत ठानानी कहा, यानी सत्व स्थान शब्द होना चाहिए, वहां संत कम्मठान कहा था उसका ट्रांसलेशन सत्कर्म स्थान किया और यहाँ संत ठान है उसका ट्रांसलेशन सत्व स्थान होना चाहिए, स्व नहीं सत्व स्थान। संत का अर्थ सत्व, आप में क्या लिखा है स्वस्थान ही लिखा है क्या? देखो शंका फिर मैं पूछती हूँ, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध स्थान और सत्व स्थानों की प्ररूपना की जा चुकी है क्योंकि वो बताए ना कि सत्व स्थान किसे होता है तो अनुभाग का घात होकर नए जो कुछ हो गए, तो कहते वो भी असंख्यात लोक है ये भी असंख्यात लोक है, की जा चुकी है। इसी प्ररूपना से जाना जाता है कि स्थानों में अंतर है क्योंकि अंतर के बिना दो अलग अलग स्थान कैसे हो गए, नहीं तो सबका मिलकर एक स्थान कह देते, ये कहना है उनको, क्योंकि इसके बिना स्थान भेद घटित नहीं होता। हम कहेंगे ना एक से बढ़ते हुए दस यहाँ नंबरिंग है, हम किसी को पांच मार्क है किसी को सात है किसी को दस है तो उसमें डिफरेंस तो है तभी तो ये स्थान घटित हो रहे, ये उनका कहना है। इस कारण अंतर प्ररूपणा निष्फल है। अंतर प्ररूपणा का अर्थ, प्ररूपणा का अर्थ क्या होता है, अंतर होता है बस, ये तो अंतर होता है कहने की जरूरत क्या है, अनेक स्थान होते हैं तो उसमें अंतर के बिना स्थान थोड़े ही हो गए अलग अलग, समझ में, कोई स्थान जघन्य है कोई उससे अनंत गुना वाला है कोई अनंत भाग वृद्धि वाला है कोई असंख्यात भाग वृद्धि वाला है, तो अंतर हुए होगा तभी तो अलग अलग अंतर कहेंगे, तो उसकी प्ररूपणा कहकर अलग कहने की क्या जरूरत थी, ये उनका प्रश्न है क्योंकि पहले वो बता चुके हैं असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है तो स्थान है इतने तो उसमें भेद है ये तो नेचुरल हो गया, तो फिर भेद है ये कहने की क्या जरूरत, ये उनका प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आया ना? हाँ देखो इस कारण अंतर प्ररूपणा निष्फल है, प्ररूपणा मत करो डायरेक्ट उसका प्रमाण बता दो, ये उनको कहना था, ख्याल में आई बात उनकी? हाँ देखो समाधान, वह निष्फल नहीं है क्योंकि अंतर के प्रमाण की प्ररूपणा द्वारा उसकी सफलता देखी जाती है, कारण कि स्थान भेद के जान लेने मात्र से अंतर का प्रमाण नहीं जाना जाता क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता, यानी वो प्रमाण बताएंगे तो वो क्या क्या बातें होती कितना अंतर हो सकता है वो बात हो जाएगी वहां पर। दूसरे यानी दूसरी बात, स्थानों का अंतर होना ही चाहिए ऐसा नियम भी नहीं है क्योंकि एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से गए हुए भी स्थानों की स्थान रूपता में कोई विरोध नहीं है, यानी बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए ऐसे भी नहीं है क्योंकि एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़कर वो स्थान हो सकता है, ऐसा कहना है उनको। शंका, स्थानांतर किसे कहते हैं, उसका समाधान, उपरिम स्थानों में से अधस्तन स्थान, अधस्तन है नीचे वाला, उपरिम है ऊपर का नेक्स्ट अनुभाग की अपेक्षा अधिक वाला, तो उपरिम स्थानों में से अधस्तन स्थान को घटाकर एक कम करने पर जो प्राप्त हो वह स्थानों का अंतर कहा जाता है। अच्छा पूरे स्थानों का अंतर, यानी एक एक स्थान का अंतर भी अलग बता रहे हैं, हमको जघन्य और उत्कृष्ट में कितना अंतर है पूछेंगे तो क्या कहेंगे, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, वो उसका अंतर हो गया, यही कह रहे हैं। उसमें जो जघन्य स्थानांतर है वह भी सब जीवों से अनंत गुना है। क्या कहते हैं जघन्य स्थानांतर ने, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्थान, जिसको हम कहते हैं अनंत भाग वृद्धि वाला डिफरेंस हो सकता है उसमें, तो वो भी जघन्य अंतर है, वो कितना हो सकता है, किसी एक स्थान से दूसरा स्थान में मिनिमम कितनी वृद्धि देखी जा सकती है। जघन्य की अपेक्षा बात करेंगे तो वृद्धि कहेंगे, ऊपर से कहेंगे तो हानि कहेंगे। तो कहते वह भी सब जीवों से अनंत गुणा है। मिनिमम डिफरेंस एक स्थान और दूसरे स्थान में वो कितना है, तो कहते सब जीवों से अनंत गुणा है, क्योंकि एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप में भी, अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप किसको कहना, प्रक्षेप है ना जो हमने कम अनुभाग वाली बात देखी वो स्थान है, उसमें बढ़कर दूसरा स्थान होगा तो क्या करेंगे, अनंत भाग वृद्धि का होगा, तो अनंत भाग में किस चीज से भाग देना, कौन सी संख्या से भाग देना, तो जीव राशि वाले अनंत का भाग देना, तो भाग देकर जो संख्या आएगी वो मूल अनुभाग में मिला देंगे तो हम उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। तो ये किसी संख्या, वो जो वहां अनंत है संख्या, उसको जीव वाले अनंत से भाग दिया तो कितनी संख्या आई, तो वो भी जीव से अनंत गुणे आई। समझ में, जो मिनिमम वृद्धि का प्रमाण है वो कैसे निकालेंगे, उस स्थान में जो अनुभाग है यानी अंतिम वर्गणा के अंतिम परमाणु में जो अनुभाग है उसको हमने जीव राशि वाले अनंत से भाग दिया, तो यानी वो लब्ध राशि कितनी आ गई, तो जीव राशि से अनंत गुणे आ गई, यानी मिनिमम वृद्धि भी इतनी है, ये कहना चाहते हैं, जिसको हम अनंत भाग वृद्धि कहेंगे। तो कहते एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप, ये समझ में है ना, वृद्धि प्रक्षेप यानी वृद्धि में बढ़ोते, एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप में भी यानी वो मिनिमम वृद्धि का प्रमाण है, सब जीवों से अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। यहां अनुभाग बंध स्थानों के अंतर योग स्थानांतरों के समान सदृश नहीं होते, इसका अर्थ क्या बताएंगे आप, कौन बताना चाहते हैं, योग स्थानों के अंतर कितने थे, देखो उसमें हर स्थान में समान अंतर था, हाँ श्रेणी के असंख्यात उसके योग स्थानों की संख्या है, डिफरेंस बिटवीन टू स्थान, नहीं, जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुचंगुल का असंख्यात भाग, इतना तो एक स्थान में दूसरे स्थान से इतना अंतर, और वो फिक्स्ड अंतर है, पहले योग स्थान से दूसरा योग स्थान इतना अधिक है, दूसरे से तीसरा उतना ही अधिक है, तीसरे से चौथा उतना ही अधिक है, ऐसे एक एक प्रक्षेप से अधिक सारे योग स्थान होते हैं। यहाँ कैसा है, कभी अनंत भाग वृद्धि है, कभी असंख्यात भाग वृद्धि, अलग अलग वृद्धि का प्रमाण अलग अलग है, सब स्थानों में अंतर समान नहीं है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। समझ में आई बात, फिर से योग स्थान में जो योग स्थान, पहले में देखो अनुभाग स्थान और योग स्थान में मूल डिफरेंस क्या है, अनुभाग स्थान में अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अविभाग है उसको हमने अनुभाग स्थान कहा था, योग स्थान में जीवों के प्रदेशों की बात है तो एक प्रदेश में कितना अनुभाग है उसको नहीं कहा योग, उसमें भी जो हमने देखा था ना कि वर्ग, उसमें भी वर्ग वर्गणा स्पर्धक कुनहानी सब ये रचना होती है, तो उसमें सबकी ग्रैंड टोटल जितनी होगी उतना उस स्थान का प्रमाण है, वो भी मिनिमम योग वाले परमाणुओं को एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, प्रदेशों को, परमाणुओं को नहीं प्रदेशों को, तो उसको कहेंगे पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, फिर एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ये सभी जो असंख्यात स्पर्धक है उनके सभी की ग्रैंड टोटल जो होगी अविभाग प्रतिच्छेदों की उसको कहेंगे योग स्थान। एक योग स्थान पहले नंबर वाला जो जघन्य योग स्थान है उससे दूसरे नंबर का योग स्थान तो कितने, वो तो उतने उस कितने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसमें, तो जो जघन्य स्पर्धक है वहां की, जघन्य स्पर्धक की जो वैल्यू है उसमें वो इतने एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है टोटल अविभाग में, उसको दूसरा योग स्थान कहेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, एक योग स्थान में आप आत्मा के सभी प्रदेश आते हैं, वो आठ प्रदेशों को छोड़कर योग स्थान नहीं बनता है, सभी असंख्यात प्रदेश है, उसी को एक लाइन दो लाइन तीन लाइन में लिखते हैं हम, तो चंगुल का संख्या था अब देखना है वहाँ पीछे का भी आपको योग स्थान है तो कर्मकांड निकाल के बताती हूँ मैं, कन्फर्म हो जाएगा। देखो यानी वो क्या है, एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान उसमें फिक्स डिफरेंस है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। देखो जरा मुझे कर्मकांड देना पीछे। हाँ योग स्थान में वृद्धि का प्रमाण बताएंगे हम, पहली दूसरी पुस्तक दोनों दे, संदृष्टि में जल्दी मिलेगा मुझे। हाँ आप उसकी बीच वाले वो कर्मकांड है ना लाल और नीला, दोनों देना मुझे। दूसरी पुस्तक में संदृष्टि अधिकार है, उसमें जल्दी मिलने के चांसेस है। योगस्थान, हाँ योगस्थान ही निकला रे। वाह क्योंकि योगस्थानों की रचना उनको उन्होंने बताई थी, उसमें प्रदेश बंध में हमने योगस्थान देखा था। एक योगस्थान और दूसरा योगस्थान, उसमें सुचंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण प्रथम स्पर्धक की बड़ी, यानी जघन्य स्पर्धक इंटू सुचंगुल के असंख्यात, इतने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्थान होता है। बात बराबर है। ये मैंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड में 920 पेज पर देखा, वह संदृष्टि अधिकार में मैंने डायरेक्ट वहां तो फिगर्स के द्वारा समझा है। मूल पुस्तक में भी यही वर्णन आया है योगस्थान के वर्णन में, यानी वो पहली पुस्तक में उसका वर्णन आता है। जहाँ योग स्थान की बात आती है ना, बंधोदय सत्व अधिकार प्रदेश बंध के प्रकरण में होगा योग स्थान। योग स्थान के अवयव भेद एवं स्वरूप 222। देखो जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुचंगुल का संख्या तो होगा, हाँ जघन्य हाँ योग किसके सुचंगुल, केवल सुचंगुल के असंख्यात विभाग नहीं, जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुचंगुल का असंख्यात विभाग इतना बढ़ेगा। यानी पूरे स्पर्धक की जो वैल्यू है ना, मिनिमम स्पर्धक मिनिमम अनुभाग वाले वर्ग वर्गणाओं का समूह उसको स्पर्धक कहेंगे, उसकी जो ग्रैंड टोटल है अविभागों की, वो अविभाग का जो प्रमाण है उसको सुचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करना, इतनी यहाँ वृद्धि होगी। यही बात यहाँ पर बताएं, पहली पुस्तक में भी वो 220-22 उसके ऊपर सभी है विस्तार से वर्णन है प्रदेश बंध के वर्णन में। अभी हम यहाँ आगे देखते हैं, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, पेज नंबर हम 115 पर पढ़ रहे थे। कहते यहाँ अनुभाग बंद स्थानों के अंतर, वो अलग अलग अंतर है हमने देखा, और वो अंतर किसको कहेंगे हम, वो अंतिम जो स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद उसमें, तो योग स्थानांतरों के समान सदृश नहीं होते। तो योग स्थानांतरों में कितना प्रमाण है, तो वहां जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुचंगुल का असंख्यात्वा भाग, डिवाइडेड बाय असंख्यात, इतना वहां पर है। समझ में आती है बात? वो यहां एक और दूसरे योग स्थान में अंतर उतना ही, दूसरे तीसरे उसमें, तीसरे चौथे इतना ही, फिक्स्ड अंतर है वहां पर। क्योंकि योग स्थान प्रक्षेपों के समान अनुभाग स्थान प्रक्षेपों में सदृशता का अभाव है। प्रक्षेपण एक स्थान में कितना बढ़ाने पर दूसरा होता है उसको प्रक्षेप कहेंगे। उसका प्रमाण हमने देखा था, जघन्य स्पर्धक मल्टीप्लाइड बाय सुचंगुल का संख्या था, ये वहां का प्रक्षेप है और वो सदृश है। और हम अनुभाग स्थानों में देखते हैं वो जो एक बंद हो या कोई भी स्थान जो है, दूसरा जो स्थान है उसमें उतनी वृद्धि है ऐसा कुछ नहीं है। अथवा अनुभाग स्थानों में छह प्रकार की वृद्धि देखे जाने से, क्योंकि कभी अनंत भाग वृद्धि है, कभी असंख्यात भाग वृद्धि है, तो कहते अलग अलग वृद्धि होने से जगह अनुभाग स्थानांतरों में सदृशता नहीं, ये कहना चाहते हैं। वो स्पर्धक का और वर्गणाओं का प्रमाण वो अंतर फिक्स था, परंतु यहाँ क्या कह रहे, वो अनुभाग के स्थानांतरों में एक स्थान से दूसरा स्थान उसमें सदृशता नहीं है। वह इस प्रकार से सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग बंध स्थान ही होता है, क्योंकि क्षपक के अंतिम समय में यही बंध स्थान है। शंका, योग वृद्धि के प्रभाव से सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में किसी जीव विशेष में अजघन्य अनुभाग स्थान भी क्यों नहीं होता? फिर वो प्रदेशों की अपेक्षा से यहाँ बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट जो समय प्रबद्ध जो है, प्रदेश बंध उत्कृष्ट कहाँ होता है? मिथ्या दृष्टि के होगा कि चौथे पांचों गुणस्थान वाले के होगा कि सूक्ष्म सांप्रायिक वाले के होगा कि केवली के होगा? हाँ, उत्कृष्ट प्रदेश बंध किससे निर्भर है? योग से। तो योग ज्यादा कहाँ है, मिथ्या दृष्टि को कि समय दृष्टि को, केवली को? बोलो, मिथ्या दृष्टि को। आप क्या कहते हैं? किसी को मनीष, हाँ, मिथ्या दृष्टि को। आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, गुणस्थान 14 है हमारे। मैं वही क्या कह, हाँ देखो योग तो कहीं पर भी ज्यादा हो सकता है। योग से मिथ्यात्व का या केवल ज्ञान बनने का कोई सवाल नहीं है, संबंध नहीं है। हमने देखा ना केवली भगवान, देखो योग किस पर है, वो कौन सा जीव समास है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो मिथ्या दृष्टि होवे, सम्यक दृष्टि होवे या केवल ज्ञानी होवे, उसका योग कहीं पर भी जघन्य उत्कृष्ट के बीच में जो यथा योग्य हो सकता है। हाँ, वो उपपाद वाला योग होता है वो पहले समय में होता है, एकांत वृद्धि वाले होता है वो शरीर पर्याप्ति तक होते हैं। ये जो परिणाम योग जो है वो कहीं पर भी कितनी वृद्धि हानि हो सकती है। सवाल यही पूछ रहा कि वहां क्या कहते, योग वृद्धि के कारण सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में किसी जीव विशेष में अजघन्य अनुभाग स्थान भी क्यों नहीं होता? क्योंकि जघन्य की अपेक्षा तो हमने देखा है कि वह तो कहना क्या चाहते हैं, बारंबार उसी बात पर आते हैं कि योग वृद्धि हुई है ने परमाणु ज्यादा हो गए, बंद की बात चल रही। हमने क्या देखा था, सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में अनुभाग बंध जघन्य होता है, ये तो बात है। तो कहते किसी को अधिक योग हो जाएगा तो क्या होगा, अधिक परमाणु का ग्रहण होगा, अधिक परमाणु का ग्रहण होगा तो अनुभाग ज्यादा होना चाहिए। यही तो उनका बारंबार उसी पर बात पर अटक गए हैं, क्योंकि यानी नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा हो गए तो अनुभाग भी ज्यादा होगा ऐसा मान रहे। भले अंतिम वर्गणा में या प्रति वर्गणा में प्रदेश ज्यादा भी हो जावे, फिर भी अनुभाग तो एक परमाणु को गिन रहे हैं हम, और यहाँ नंबर ऑफ परमाणुओं का अनुभाग गिनने की बात कर रहे हैं। समझ में न क्या क्या बात हो रही है? फिर से शंका ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उसमें मन में अभी भी परमाणु की संख्या बढ़ती है तो अनुभाग भी बढ़ना चाहिए, ये बात अभी उसके हटी नहीं, अभिप्राय में से चली नहीं है। इसलिए पूछते हैं योग वृद्धि के प्रभाव से, योग वृद्धि के कारण क्या होगा, समय प्रबद्ध बड़ा होगा। तो समय प्रबद्ध बड़ा होगा तो यहाँ कितने कर्म बन रहे मूल प्रकृतियां? अश्विन भाई, हाँ सूक्ष्म सांप्राय मोनिय नहीं बन रहा है ना, हाँ छह बन रहे, तो छह में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अधिक योग है तो समय प्रबद्ध जो है वो बड़ा होगा और वो ज्ञानावरण के खाते में ज्यादा आ जाएगा। उसके प्रभाव से सूक्ष्म सांप्रदायिक के अंतिम समय में किसी जीव विशेष में, क्योंकि किसी को उत्कृष्ट योग होगा, अजघन्य अनुभाग, यानी जघन्य के बदले अजघन्य। अजघन्य क्यों? क्योंकि बढ़कर होगा, उसको ज्यादा परमाणु है। क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि योग वृद्धि से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है। क्योंकि योग किसमें निमित्त है? प्रदेश और प्रकृति बंध में। और अनुभाग की वृद्धि काहे से होगी? वो कषाय से। अभी उसमें अनुभाग बंध जो कुछ अनुभाग बंध के योग्य जो अध्यवसाय स्थान कहेंगे उसको हम उसको कषाय कहेंगे सामान्य से। तो योग वृद्धि से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है। फिर शंकाकार पूछते हैं, वह कैसे जाना जाता है? समाधान, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का संयोग और अयोग केवलियों में उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है ऐसा चूंकि वेदना स्वामित्व सूत्र में कहा जा चुका है। क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा था कि उत्कृष्ट अनुभाग किसके होगा? वेदनीय का, नाम का, गोत्र का। तो बंध कहाँ उत्कृष्ट होता है? अनुभाग बंध, ये प्रकृति है, शुभ शुभ प्रकृतियां है, और अनुभाग बंध तो दसवें तक होता है। तो वहां उसने अनुभाग बंध उत्कृष्ट किया, तो वहां उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, तो बंध के समय सत्ता में तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेक पड़े थे, तो उनमें से कितने ही परमाणु उत्कृष्ट रूप से हो गए। तो ये उत्कृष्ट अनुभाग वो तो ऊपर भी पाया जाएगा, तो संयोग और अयोग केवली में भी पाया जाता है। ऊपर देखो प्राकृत में, देखो ऊपर जो लिखा है प्राकृत में ढूंढो, 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन में, वेदनीय नामा गोदानम सजोगी अजोगी केवलीसु है। क्या उस आप में? हाँ हाँ, प्राकृत में भी नहीं है। क्या लिखा है? अनुभाग की बात है ना? देखो देखो निकालो, उत्कृष्ट अनुभाग स्वामित्व निकालो, पद मीमांसा स्वामित्व की बात आई थी ना, निकालो। बिल्कुल आयोगी के अंतिम समय तक लिखा था वेदनीय का, और ऐसा ही नाम गोत्र में दिखाया था, निकालो। स्वामित्व में 23-24 पेज पर वहीं पर होगा। पहले ज्ञानावरण की बात बताई ना, वेदनीय की, जघन्य है वो, उत्कृष्ट देखना है हमको, वो जघन्य है, हमको उत्कृष्ट देखना है। उत्कृष्ट पहले बताई क्या, जघन्य वेदन, पेज नंबर 16 निकालो। सत्रह निकालो, 14 सूत्र के नीचे। बंध कौन करता है? तो सूक्ष्म सांप्राय लिया था 14 में, उसका सत्व बताया, सांता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर। ये बंध कहाँ होता है? सब जीवों को दसवें के क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, क्षीण कषाय सयोगी और अयोगी गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के, इन गुणस्थानों में वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है, लिखा है ना। और यहाँ प्रश्न पूछा भी था, क्योंकि सूत्र में सयोगी लिखा था, और यहाँ कहते अयोगी कहाँ से निकाला आपने, तो उसकी भी वहां चर्चा हुई थी। ये इस पर वो शंकाकार ने पूछा अभी 115 नंबर के पेज पर, वहां पेज 17 लिख के रखो। देखो क्या कहा, ये समाधान की पहली लाइन फिर से पढ़ती हूं मैं। वेदना भाव में हमने जो पद मीमांसा देखी ना, उत्कृष्ट पद, जघन्य पद, उसकी चर्चा हमने स्वामित्व में की थी, वही यहाँ समाधान भी बता रहे हैं। फिर से मैं पढ़ती हूँ प्रश्न। देखो प्रश्न में क्या पूछा था, योग वृद्धि से अनुभाग में वृद्धि क्यों नहीं संभव। तो कहते समाधान की योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि के लिए कारणभूत नहीं है, और वो कैसे जाना जाता है तो उसका समाधान लिख रहे हैं पेज नंबर 115 पर। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का संयोग और अयोग केवलियों में उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है। बंधने के बाद उसका उत्कृष्ट पाया जाता है, क्योंकि अभी घटने का कोई कारण नहीं है, वहां पर शुभ प्रकृतियां हैं, अनुभाग घटेगा कैसे उसका। ऐसा चूंकि वेदना स्वामित्व सूत्र में कहा जा चुका है, ये सूत्र भी हमने वहां देखा ना 17 नंबर के पेज पर, सूत्र नंबर 14 था। अतः इससे जाना जाता है कि योग वृद्धि के होने से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि समान योग तो हर समय नहीं रहता है, उसमें तो योग की वृद्धि हानि तो होती रहती है, तो उसमें भी सत्व में भी वृद्धि होनी चाहिए थी, हानि छोड़ो पर वृद्धि तो होनी चाहिए थी। अयोगी में तो योग ही नहीं है, परंतु तो सहयोगी में तो योग की वृद्धि होती है, तो वहां पर वृद्धि क्यों नहीं हुई अनुभाग की। परंतु वहां अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है। यदि योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि का कारण होती तो यह नियम उचित नहीं था, क्योंकि वैसा होने पर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों ही अनुभाग स्थान वहां संभव थे। वहां उत्कृष्ट ही लिया है केवल, अनुत्कृष्ट तो कहा नहीं। कहते ना किसी को उत्कृष्ट होता है किसी का अनुत्कृष्ट, परंतु ऐसा तो नहीं था। अथवा जिस जीव के वेदनीय कर्म की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके भाव वेदना नियम से उत्कृष्ट होती है, इस प्रकार जो वेदना सन्निकर्ष विधान में प्ररूपना की गई है उससे भी जाना जाता है कि, क्या कहना चाहते हैं, वेदनीय कर्म की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा, ने पुस्तक नंबर 11 क्षेत्र और काल देखा था, वेदना क्षेत्र विधान देखा था, कर्म की यानी वेदना यानी कर्म, कर्म का जो क्षेत्र वो कैसे निकालते हम, अरे जीव की जितनी अवगाहना होगी उतना कर्म का क्षेत्र होगा। तो वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट क्षेत्र एक जीव की अपेक्षा इतना बड़ा हो जावे कि वो वेदनीय कर्म सब जगह फैल जावे, किसके होगा ब्रह्मा, केवली समुदाय में, लोकपुरण में, तो पूरा लोग उसका क्षेत्र हो जाएगा। तो कहते हैं कि देखो क्या कहा, एक तो वेदना स्वामित्व की बात की, अब कहते हैं जिस जीव के, मिला ना नीचे से पांचवी लाइन है, वेदनीय कर्म की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, कब है, लोकपुरण समुदाय में, उसके भाव वेदना नियम से उत्कृष्ट होती है, क्योंकि केवली के तो उसका अनुभाग मैक्सिमम ही होता है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जो उत्कृष्ट अनुभाग बंधा है सत्व में, और उसके वहां की ये भी प्रश्न था कि वहां स्थिति कितनी बांधी थी, दसवें के अंत में ज्ञानावरणी की स्थिति कितनी बांधी थी अश्विन में, अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त स्थिति ज्ञानावरण की अंतर्मूर्त, और वेदिनी की बारह मूर्त, वेदिनी की बात करे थे, वेदिनी के बारह मूर्त, तो बारह मूर्त में तो सब समाप्त होते, और यहाँ तो बात केवली की ली, और किसी किसी केवली के ऐसा नहीं लिया, अंतर्मूर्त वाले केवली का होता है ऐसा नहीं लिया, या बारह मूर्त के अंदर जो केवल ज्ञानी हो जाता है उसकी भी बात नहीं की, सभी के लिए नियम है। कौन सा, वो तो जितनी भी केवली की जो कुछ तेरवे का काल है उसमें जो समुद्घात करेंगे और वो तो लोकपूर्ण होगा, तो वो क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है, वहां भाव भी नियम से उत्कृष्ट है, ऐसा कहा, भाव नियम से उत्कृष्ट है ना, वो बारह मुहूर्त तो कब के चले गए, तो बारह मुहूर्त कब के चले गए, परंतु वो तो अंतिम समय में उत्कृष्ट बांधा था, तो उत्कृष्ट अनुभाग आया कहां से, तो जो उत्कर्षण के लिए बंध की अपेक्षा आती है, तो जब दसवें के अंत में नया बंध हुआ था वहां का, तो सत्ता में पड़े हुए परमाणुओं का अनुभाग बढ़कर उतना हुआ था, तो वो कायम रहेगा अंत तक, यही कह रहे कि वहां भाव वेदना नियम से उत्कृष्ट होती है, इस प्रकार जो वेदना सन्निकर्ष विधान में प्ररूपना की गई है उससे भी जाना जाता है कि ये अपना विषय हो चुका है दोनों। योग की वृद्धि व हानि अनुभाग की वृद्धि व हानि में कारण नहीं है, ये तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। प्रश्नकार का जो प्रश्न था उसके लिए उन्होंने ये जवाब दे दिया। लोक पुराण समुद्घात में वर्तमान केवलिका क्षेत्र उत्कृष्ट होता है, वर्तमान यानी विद्यमान। लोक पुराण समुद्घात में जो केवली है उसका क्षेत्र, क्योंकि उनकी जो जीव की अवगाहना इतनी बड़ी होती है तो उसका कर्म भी पूरा फैल जाता है, भाव भी जो सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के द्वारा बांधा गया है वह लोक पुराण को प्राप्त केवली में उत्कृष्ट भी होता है वह अनुत्कृष्ट भी होता है, ऐसा न कहकर, क्या कहा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए किसी को उत्कृष्ट किसी को अनुत्कृष्ट, तो कहते उत्कृष्ट ही होता है। इस प्रकार की गई प्ररूपणा से निश्चित होता है कि योग की वृद्धि व हानि अनुभाग की वृद्धि व हानि का कारण नहीं है, यह अभिप्राय है। यहां तक समझ में आए, समाधान क्या कर रहे उसको हमको समझना है। अथवा कषाय प्रावृत में, कषाय प्रावृत यानी अभी अपने पास जयधोला का जो है ना विषय, उसमें दर्शन मुख क्षपक को छोड़कर, दर्शन मुख क्षपक यानी कौन, जो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करने के लिए जो उसने तीन करण मानता है, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप और वो उसके सम्यक प्रकृति रूप होते हैं और फिर अधिक मात्रा में वो खिरकर वो समाप्त होते हैं, क्षय हो जाता है। तो कहते हैं दर्शन मोह क्षपक को छोड़कर सर्वत्र सम्यक्त्व और सम्यक्त्व नहीं सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह जो कहा गया है उससे भी जाना जाता है कि योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि का कारण नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, जब से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तैयार हुई तो थ्रू आउट उसका अनुभाग उत्कृष्ट ही पाया जाता है, अनुभाग में कोई चेंज नहीं होता वहां पर। कब हो जाएगा चेंज, जब वो क्षपक दर्शन मोहनी की क्षपणा में हो जाएगा, उसके पहले नहीं, ये कहना चाहते। अगर बीच में कहीं वो योग के वृद्धि से होता तो वहां थ्रू आउट उत्कृष्ट कैसे कहते, कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट कभी कुछ भी वेरिएशन हो सकता था उसमें। तो उससे जाना जाता है कि योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि का कारण नहीं है। इसी से क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से अथवा गुणित कर्मांशिक स्वरूप से आकर, क्या कहते हैं, क्षपित कर्मांशिक किसको कहना, सत्ता में कम है उसके लिए सारी जो हमने कंडीशंस देखी थी कितने वो बादर पृथ्वी का एक में घुमा वगैरह वगैरह, फिर असंख्यात बार समय को प्राप्त किया जो कुछ असंख्य, वो सारी जो कंडीशन चार चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, बहुत बार जघन्य योग में रहा, वो क्षपित कर्मांशिक। गुणित कर्मांशिक यानी बहुत बार संकलेश हुआ, बहुत बार उत्कृष्ट योग धारण किया, वो तो नरक में गया, हाँ तो उसमें वो तो उत्कृष्ट योग से उसने वो अधिक परमाणु ग्रहण किए, संकलेश भी ज्यादा थे। तो कहते क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से अथवा गुणित कर्मांशिक स्वरूप से आकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक आए हुए के साथ परमाणु कम है, गुणित कर्मांशिक के पास ज्यादा है तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए था। तो कहते हैं आकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर 266 सागरोपम परिभ्रमण करके, क्योंकि 266 सागर तक तो 166 सागर वेदक सम्यक तो रहा, फिर सम्यक मिथ्यात्व में आया, फिर वेदक सम्यक तो 66 सागर तक किया, एक करने के बाद दर्शन मोह क्षपक अपूर्व करण का जब तक प्रथम अनुभाग कांडक पतित नहीं होता तब तक, क्या कहते हैं, दर्शन मोहनी के क्षपना में वहां पर भी अधकरण अपूर्व करण और अनुवृत्तिकरण होते हैं, तो अपूर्व करण से जब तक वह अनुभाग कांडक नहीं होता तब तक सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है ऐसा कहा गया है, तब जाके उसमें अनुभाग कांडक होते हैं। नहीं तो बीच में इतने काल रहा तो उस सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के अनुभाग में कोई चेंज नहीं हुआ। अन्यथा योग वृद्धि को अनुभाग वृद्धि का कारण मानने पर क्षपित कर्मांशिक को छोड़कर गुणित कर्मांशिक के द्वारा ही सम्यक्त्व के ग्रहण किए जाने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? यदि योग वृद्धि से अनुभाग ज्यादा होता ऐसा मानेंगे तो गुणित कर्मांशिक में बहुत बार योग वृद्धि हुई, मैक्सिमम योग में बहुत बार हुआ, तो उसका अनुभाग उत्कृष्ट होना चाहिए था। क्षपित कर्मांशिक के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट नहीं होना चाहिए था, अनुत्कृष्ट होना चाहिए था। परंतु ये रूल तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है कि जब से प्रथमोक्षम सम्यक्त हुआ है, कभी भी वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, जो कुछ किया उसका अनुभाग सर्वत्र उतना ही उत्कृष्ट रहा। वो अनुत्कृष्ट कब होना शुरू होता है? अपूर्व करण में जब उसने अनुभाग कांडक शुरू किया था तब से होता है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि वहां योग की अधिकता पाई जाती है। और ऐसा होने पर मिला ना नीचे से तीसरी लाइन, दर्शन मोह क्षपक को छोड़कर सर्वत्र सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग उत्कृष्ट अथवा अनुत्कृष्ट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा। यदि परमाणु की संख्या पर वो निर्भर होता, योग के लिए निर्भर होता, तो किसी को उत्कृष्ट किसी को अनुत्कृष्ट कह देते, परंतु ऐसा तो है ही नहीं है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा उपदेश नहीं है, इसलिए योग अनुभाग का कारण नहीं है यह सिद्ध होता है। ये कितने कितने दलीलें दी उन्होंने, अलग अलग कहा भी है, ऊपर लिखा है देखो, जोगा पयड़ी पदे से ठिदी अनुभागे कसाय दो कुणदी आदि। तो ये नीचे जो गोमटसार कर्मकांड की गाथा है 257 के, जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंदी, ऐसा भी उसमें आता है पाठ। देखो अब आते हैं पेज नंबर 117 पर। ये समझ में आती है बात? क्यों मनीषा भी? थोड़ी थोड़ी, कुछ बात नहीं। यानी योग से क्या होता है, प्रदेश बढ़ते हैं, उन प्रदेश बढ़ने से अनुभाग की वृद्धि नहीं होती, बस इतना ही कहना है। तो कहते कहा भी, यानी उन्होंने वो गाथा वृद्ध, यानी गाथा का आधा भाग वृद्ध उद्धृत किया है, जीव योग से प्रकृति और प्रदेश बंध को तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध को करता है। कषाय ने वो संकलेश विशुद्धि वाला वो कषाय लेना है। क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से आकर सम्यक्त्व को प्राप्त करके 266 सागरोपम काल तक भ्रमण करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो। क्षपित कर्मांशिक ने बहुत बार उसने जघन्य योग धारण किया था। अब कहते कि सम्यक तो प्राप्त किया, फिर 266 सागर तक रहा, फिर मिथ्यात्व में गया दीर्घ उद्वेलन काल द्वारा। ये उद्वेलना किसको कहते हैं? प्रेरणा बिन मालूम है आपको? उल्टा उल्टा सन। देखो यहाँ किसकी बात है? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बात। वो कब तैयार हुई थी? वो तो बनने वाली तो है नहीं है, जब प्रथमोपशम पहली बार हुआ तो तैयार हुई। वो मिथ्यात्व में जाने पर भी वो प्रकृतियां बनी रहती है, बहुत काल तक बनी रहती है, परंतु क्या होता है उसका उल्टा मिथ्यात्व में संक्रमण चालू हो जाता है, और वो भी कांडकों में होता रहता है। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण एक एक कांडक होता है, और वो एक अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उल्टा संक्रमण होता है। स्थिति कितनी उसकी? जब सम्यक्त्व प्राप्त किया था तो मिथ्यात्व की स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी हुई थी, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की भी स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण थी। अब एट अ टाइम पल्ले का असंख्यातवा भाग जो है इतने उसके कांडक होते, उसके अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, यानी इतनी सागरों की स्थिति घटाते घटाते बहुत लंबा काल है, जिसको कहते पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल में ये उद्वेलना पूरी कर देता है, इसको उद्वेलना कहते हैं। वे मिथ्यात्व में आने पर उल्टा संक्रमण होता है। फिर पढ़ते देखो इसको, पहले पहले क्षपित कर्मांशिक था, जघन्य योग वाला बहुत बार था, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, 266 सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा, यानी बीच में एक अंतर्मूर्त के लिए वो सम्यक मिथ्यात्व में आया था, फिर बाद में मिथ्यात्व को आया, और दीर्घ उद्वेलना काल द्वारा, अभी उद्वेलना का काल कितना है तो पल्ले का असंख्यात्व अभाव, उसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट काल होगा तो उसको कहते दीर्घ काल में उसने उद्वेलना कर दी। सम्यक द्वार मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दो समय काल प्रमाण एक स्थिति करके स्थित हुए क्या कहते हैं, अभी उसको समझना चाहिए क्या कहना चाहते हैं कितनी स्थिति बनाई उसने, हमारा कहाँ गया पेन और चौक दिख रहा है आपको, नहीं देखते हैं चौक, फिर से ये वाक्य पढ़ना क्या कहा, अभी उसने उद्वेलना की, उद्वेलना करते 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 अंतिम जो एक अंतर्मुख शेष रहा तो उसकी उद्वेलना पूरा पूरा अंतर्मुख, देखो क्या कहा, पहले तो सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति के अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक थे, अब मिथ्यात्व में आया, उद्वेलना होते 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 उसकी स्थिति घटती गई, घटते 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 कितना, वो तो पहले तो गुण संक्रमण वगैरह होता रहा, अभी उसके अंतिम एक अंतर्मूर्त इतने उसके निषेक बाकी रहे, अब एक अंतर्मूर्त जो निषेक है और ये मिथ्यात्व को जितना वो तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का क्यों ना हो, अब यहाँ क्या होगा, एक एक उसरूप होकर वो मिथ्यात्व में होकर एक एक निकल जाएगा, उदय में आकर निकल जाएगा, तो ये उदय में आकर निकला क्योंकि उदय तो मिथ्यात्व का है और ये तो ऊपर पड़े है दूसरे निषेक से, वर्तमान में आते हैं तो मिथ्यात्व रूप से उदय में आते हैं, वर्तमान में आते तो मिथ्यात्व रूप से आते, ऐसा ही चल रहा था अभी तक, अब क्या हुआ ऐसे होते 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 अभी यहाँ निषेक है और ये वर्तमान में जब आएगा तो मिथ्यात्व रूप होकर उदय में आएगा। देखो इसके क्या अर्थ है, देखो यहाँ पर फिर से इसको देखते, तो उद्वेलना करते करते क्या तीसरी लाइन, दो समय काल प्रमाण एक स्थिति करके, ये जो इसका एक निषेक बाकी है अपने रूप से एक निषेक बाकी है किसका, सम्यक मिथ्यात्व का अपना और सम्यक प्रकृति का अपना, उसकी स्थिति कितनी है दो समय, निषेक कितना है एक, इसकी स्थिति कितनी है दो समय, क्योंकि वर्तमान समय तो वो मिथ्यात्व रूप से होने वाला है तो इसकी स्थिति कितनी बाकी है दो समय वाली, और उसका स्थिति कितनी है तो एक स्थिति यानी निषेक, निषेक एक है और उसको काल कितना है तो दो समय ऊपर पड़ा है, दो दूसरे समय में पड़ा है, तो कहते दो समय काल प्रमाण एक स्थिति करके स्थित हुए जघन्य सत्व वाले के भी, अभी इसका सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का मिनिमम सत्व है कि नहीं है, क्योंकि पहले में पहले सपित कर्मांशिक था एक बात, दूसरी बात दो छासर सागर तक इन प्रकृतियों की सत्ता में क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे एक एक निषेक खिरा ना, तो दो छासर सागर प्रमाण निषेक तो खिर गए ना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर थे उसमें से दो छासर सागर इतने निषेक चले गए, क्योंकि एक समय में एक वहां तो सम्यक प्रकृति रूप उदय होता रहा था, समझ में आई बात, अब मिथ्यात्व में आने पर उद्वेलना करते 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 मैंने पहले ही पहले वो मिनिमम कर्म वाला जीव लिया, क्षपित कर्मांशिक था, दो छासर सागर परिभ्रमण करने से उतने निषेक और कम हो गए, अब उद्वेलना करने से और भी नष्ट हो गए, अब एक सिंगल निषेक बाकी है तो मिनिमम पॉसिबल परमाणु इसमें विद्यमान है, आप कहेंगे जब उसने क्षपना की थी तब भी लास्ट में एक एक निषेक ही बाकी था, आप क्या कहते हैं, होने दो ना, अरे पर वहां तो पूरा मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप हुआ था, वो मैक्सिमम द्रव्य था, ये मिनिमम द्रव्य की बात करने है, हाँ अकेले सम्यक तो की रहेगी, ऐसा ही है आप बताते बराबर, उन्होंने इन जनरल बात की, यहाँ कहते कि उद्वेलना होते होते पहले सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य पूर्ण रूप से मिथ्यात्व में हो जाता है, उस समय भी लास्ट में ऐसी पोजीशन होगी, सम्यक मिथ्यात्व का एक निषेक बाकी है, और वो दो स्थिति वाला है। ये उद्वेलना पुण्य होने अभी भी सम्यक प्रकृति के कुछ निषेक बाकी है, उसके भी उद्वेलना होती है, उसके भी और असंख्यात वर्ष। सम्यक प्रकृति की हो जाएगी, बराबर सम्यक प्रकृति की, सॉरी सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्वरूप, फिर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्वरूप होते, तो उसका अपना अपना एक निषेक बाकी है, तब उनकी स्थिति मिनिमम है, बराबर यही कह रहे हैं। यानी उसके जघन्य परमाणु है सत्ता में, किसके सम्यक प्रकृति की बात करो या सम्यक मिथ्यात्व की करो, तो जघन्य सत्व वाले के भी चूंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था उसका उत्कृष्ट अनुभाग कब तक होगा, अरे जब तक वो क्षपणा करने के लिए अपूर्व करण मानेगा तब जाके उसका अनुभाग कांड शुरू होगा, तब तक उसमें अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ख्याल में आई ना बात, मिथ्यात्व के अनुभाग में जो परिवर्तन हुआ था कब, जब सम्यक्त्व के पहले उसने जो कुछ कांडघात वगैरह किए थे। अतएव इससे जाना जाता है कि समान धनयुक्त वृद्धि से अनुभाग की वृद्धि नहीं होती, यानी अधिक नंबर ऑफ परमाणु होने से अनुभाग की वृद्धि नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। इससे समान धन वाले बहुत परमाणुओं के होने से अनुभाग की अधिकता होती है, इस आग्रह का निराकरण होता है, और शंकाकार बार बार उसके सभी प्रश्न है उसी आग्रह के कारण हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, असमान धन वालों की एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं है। क्या कहते हैं, असमान धन वाले अधिक पंक्ति ने क्या लिया, हमने हमने देखा था ना अभी जो हमने बात की थी, जो अनुभाग स्थान होता है अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक वर्ग का, यानी एक परमाणु का विभाग, पर उसमें भी जघन्य वर्गणा से लेकर सभी स्पर्धक सभी उसमें है। अब पूरी वर्गणा मत लो, एक एक वर्ग लो, यहाँ तो अंतिम वर्गणा में समान धन वाले सारे परमाणु थे। अब प्रत्येक वर्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो यहाँ जितना था, जैसे हमने 100, 101, 102 वगैरह माने थे ना, वैसे ये असमान वाले ले लो केवल, ये पहली स्पर्धक के, दूसरा स्पर्धक के, तीसरा स्पर्धक के, चौथा स्पर्धक, ये अंतिम स्पर्धक, ये असमान धन वाले सब परमाणु। पूरी वर्गणा के मत लो, परंतु एक एक से बढ़ते हुए तो है ना, प्रत्येक स्पर्धक में एक एक से बढ़ते हुए, फिर जंप मार के दुगुना हुआ, फिर एक एक से बढ़ा, फिर तिगुना हुआ, फिर एक एक से बढ़ा, इस तरह से अनंत स्पर्धक ये असमान धन वाले एक पंक्ति श्रेणी रूप, उसको तो कंसिडर करो, ये कहना चाहते हैं। क्या कहा, असमान धन वालों की एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं है। यह बात केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय, ये चारों ही प्रकृतियां तुल्य व मिथ्यात्व से अनंत गुणे हीन अनुभाग से युक्त है, इस 64 पद वाले उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी अल्प बहुत्व से जानी जाती है। क्या कहना चाहते हैं, किस किस को एक साथ लिया, केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असातावेदनीय और वीर्यांतराय। अब वीर्यांतराय प्रकृति कैसी है, देशघाती है। हाँ, तो कहते हैं कि और इनका उत्कृष्ट वहां लिया है ना, यथा वीर्यांतराय के लता समान जघन्य स्पर्धक से लेकर एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है। किसी का उत्कृष्ट अनुभाग जो है वो तो जघन्य से लेकर, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है, उसमें कौन से कहाँ से लेकर उत्कृष्ट तक हो सकता है, उसका देश यानी लता से लेकर उसका शैल का उत्कृष्ट, तो वीर्यांतराय के इतने स्पर्धक है, एक स्थानीय, द्विस्थानीय, चतुर्थ, वो सभी उसके सभी, इसका इतना उत्कृष्ट है उसको एक से ही गिनेंगे कि कहाँ से गिनेंगे, जैसे किसी के पास 2 लाख है तो एक से लेकर 2 लाख तक गिनेंगे, ये कहना चाहते हैं। तो उनकी पंक्ति 1, 2, 3, 4, 2 लाख तक है। ऐसा समझने के लिए देखते हैं। देखो अभी आगे देखते हैं। परंतु केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणीय के सर्वघाती जघन्य स्पर्धक से लेकर दारू समान अनुभाग का अनंत बहुभाग जाकर इसके आगे त्रिस्थान व चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग अवस्थित है। अंतिम अनुभाग सबका समान लिया, किसका? वीर्यांतराय का, केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण का। अब केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण का जघन्य कहाँ से शुरू हुआ था? इसका तो लता, फिर दारू का अनंतवा भाग, और फिर बहुभाग, और फिर बाकी सब। अब केवल ज्ञानावरण का दर्शन मिनिमम कितना था? लता वाले तो उसमें है ही नहीं, दारू का अनंतवा भाग भी नहीं है, तो दारू का बहुभाग वाला जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इसकी पंक्ति शुरू हुई, और वीर्यांतराय की पंक्ति लता से शुरू हुई। तो वीर्यांतराय में अधिक स्पर्धक है कि नहीं? यहाँ ऊपर क्या लगा? एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण के जघन से लेकर उत्कृष्ट तक जितने नंबर ऑफ स्पर्धक है उससे वीर्यांतराय के जघन से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक जो है उनमें स्पर्धक और वर्गणाएं ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अनंत का डिफरेंस है उसमें, तो उसमें अनुभाग तो सबका उत्कृष्ट समान बताया। तो ये जो पंक्ति की अधिकता या हीनता उसके लिए कारणभूत नहीं। समझ में है ना क्या कहना चाहते हैं? देखो फिर से यथा से पढ़ती है। वीर्यांतराय के लता समान जघन्य स्पर्धक से लेकर, वीर्यांतर का जघन्य स्पर्धक कहाँ कैसा है? वो क्षोभ यानी क्या है? वो देशघाती प्रकृति है। तो देशघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं। तो देशघाती ने लता और दारू का अनंत भाग, तो लता का जो जघन्य वहां से लेकर कहाँ तक है? शैल के उत्कृष्ट तक। और केवल ज्ञानावरण का वो सभी सर्वघाती है, दारू के बहुभाग से लेकर शैल के उत्कृष्ट तक। दोनों का अंतिम एक लेवल पर है, वीर्यांतराय का भी और केवल ज्ञानावरण का भी, परंतु उनका जघन्य अलग अलग लेवल पर है। तो वीर्यांतराय की पंक्ति बहुत बड़ी है और केवल ज्ञान की वो केवल ज्ञानावरण की पंक्ति छोटी है, फिर भी उत्कृष्ट अनुभाग सबका समान है। तो कहते वो पंक्ति की अधिकता अनुभाग के लिए कारणभूत नहीं है। यहाँ लास्ट लाइन, केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति से, पंक्ति समझ में आई ना अभी? वीर्यांतराय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति बहुत है, क्योंकि उसमें कितने स्पर्धक और है? दारू का अनंत भाग वाले स्पर्धक और लता वाले, ये सब मिलकर भी अनंत होते हैं, इतने स्पर्धक उसमें ज्यादा है। कितने मात्र से वे बहुत है? वह लता समान अनुभाग स्पर्धकों तथा दारू समान अनुभाग स्पर्धकों के अनंतवे भाग मात्र अधिक है। इसका अर्थ ख्याल में आया? हाँ, जो देशघाती रूप से है। इसी कारण उक्त चार कर्मों के अनुभाग की समानता उचित नहीं है। क्या कहा? ये पंक्ति उसकी छोटी इसकी बड़ी है, तो उत्कृष्ट अनुभाग असमान होना चाहिए था, फिर भी ऐसा नहीं है। परंतु सूत्र में सदृशता बतलाई गई है, बंद कर। इससे जाना जाता है कि असमान धन वाले एक पंक्ति रूप परमाणुओं के अनुभाग के मिलाने पर भी अनुभाग स्थान नहीं होता। ये बारंबार उसको अलग अलग पद्धति से जो घटित करके बता रहे हैं, तो कहते एक ही वर्गणा में समान धन वालों की अधिकता होने से भी अनुभाग स्थान बढ़ता नहीं है। अब कहते जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो असमान एक एक से बढ़ते हुए या अलग अलग बढ़ते हुए जो अनुभाग है उसकी टोटल करने से तो अनुभाग स्थान होता होगा, तो कहते ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ओर से बता चुके। इस जघन्य स्थान को सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर, ये जघन्य स्थान हमने पहले देखा था कहाँ होता है? सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम, ये बंध स्थान की बात है। सत्व स्थान तो सहयोगी अयोगी क्यों भी है, यहाँ बंध स्थानों की चर्चा है। तो कहते हैं ये जघन्य स्थान से दूसरा जो स्थान है वो कितना है, तो हमने देखा था अनंत गुणा वाला है, क्योंकि वो क्षपक जो में एक एक समय में जब ऊपर चढ़ते हैं तो अनंत गुणे हानि होती अनुभाग में, क्योंकि तो इस जघन्य स्थान को सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में बांधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। अभी हम अनुभाग स्थानों को गिना रहे, जघन्य स्थान सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम स्थान, दो नंबर का स्थान द्विचरम समय में, वो उसमें डिफरेंस कितना है, तो कहते अनंत गुणा। इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। हमने देखा ना पहला 10 है और दूसरा 100 हो जावे, तो अंतर कितना हुआ, 100-10 हो जाएगा ना अंतर उसमें। वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर वृद्धि स्पर्धक शलाकाएं ने कितने स्पर्धकों की वृद्धि हुई, क्योंकि अनंत गुणा का डिफरेंस हुआ ना, अनंत स्पर्धकों की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, जितने स्पर्धक बढ़कर है उसका विरलन करो, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर। देखो अनुभाग स्थान किसको कहा हमने, अनुभाग कितना बड़ा, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जितना होगा उतना है, और यहाँ मान लेते पहले इतने स्पर्धक थे, अभी इतने अधिक स्पर्धक हो गए, तो जितने स्पर्धक बढ़े हैं वृद्धि शलाका ली ना, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन किया और उसमें टोटल जो अनुभाग बढ़ा उसको समखंड करके दिया, एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये स्पर्धक वृद्धियां हैं क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है, उसी को स्पर्धक वृद्धि कहा, क्योंकि अंतिम जो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जो स्थान था उसमें इतने बढ़े, ऐसा कहेंगे हम। हाँ अभी देखें इनको स्पर्धक संज्ञा क्यों है, स्पर्धक भी उतने बढ़ेंगे ना ज्यादा, क्योंकि अगर एक ही स्पर्धक बढ़ता अंतिम से अंतिम की बात द्विगुणी होगी ना। देखो इनकी स्पर्धक संज्ञा कैसे है, उसको स्पर्धक क्यों कह रहे हैं, अभी पढ़ते हैं इसको, फिर कल इसको दोबारा ले लेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कारण कि चिर अनुभाग को छोड़कर युगपद वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धकपना पाया जाता है। यानी एट ए टाइम जो वृद्धि हो गई ना, यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ये उन्होंने इतना विरलन किया उसमें ये लिया, उसको कहते हैं प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। एक कम ये कल ही पढ़ना पड़ेगा, एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण, ये बहुत जगह उनका करेक्शन करना है, वृद्धि स्पर्धक वो बराबर लिखना है, वो ध होता है वो ध के नीचे लिखना है। एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है, एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरी वर्गणाओं का अंतर होता है। ये पूरा ही पूरा हम कल पढ़ेंगे, यानी एक वृद्धि हुई तो उसमें जघन्य से दूसरा जो स्थान है उसमें क्या क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो मैं वही।